जाएगा आप लेना शुरू कर दें, उनकी सारी माओं की क्लास लेना शुरू कर दें, तो नहीं जैसे भी समझे। तो खैर क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. उस क्लास में हम अपनी हजरत के बारे में नक्शबंदीदा मुलाकात, उनकी किताब मिसाली औरत में से मिसाली माँ का मौजू पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पेज नंबर 132 के ऊपर थे। और जो अगला पॉइंट हमने पढ़ना है आज वो है, ये जरा उनवान भी बता देना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं आजकल, वो है बलूगत की उम्र के बच्चों की तरबियत, बलूगत की उम्र के बच्चों की। तो इसमें और बच्चियां हो तो 9 साल से भी कोई बालिग हो सकती हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ये इस पूरी के पूरे एज ग्रुप की बात हो रही है बच्चियों में। और बच्चों में जो है वो उमूमन 12 से पहले बालिग नहीं होते हैं, लेकिन 12 के बाद जो है ना वो किसी वक्त बालिग हो सकते हैं। तो इनके लिए अगली नसीहत के, फिर जो बच्चों के स्कूल के इवेंट्स तकरीबात हों उनमें ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें, शामिल करें, ठीक है। माँ बाप को चाहिए कि इन तकरीबात में खुद जाएं ताकि बच्चे को पता रहे कि मैं अच्छे ग्रेड लूंगा तो माँ बाप स्कूल में आएंगे और उनको खुशियाँ मिलेंगी। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज और हर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी बच्चे की जो तालीमी कारकर्दगी हो उसके बारे में माँ बाप को सही पता होना चाहिए। ये ना हो कि बच्चा अपने क्लास की शीट लाए और अपनी बड़ी बहन से दस्तखत करवा के वापस ले जाए और माँ बाप को पता ही ना चले कि रिजल्ट में क्या था। गेट टू नो द पीपल इन योर चिल्ड्रंस लाइफ, ये इसी पॉइंट का ये सब रखा है कि गेट टू नो द पीपल इन योर चिल्ड्रंस लाइफ, यानी बच्चों की जिंदगी में जो लोग हों उन लोगों को भी आप समझने की कोशिश करें कि उनके दोस्त कैसे हैं, यानी बच्चों के दोस्त कैसे हैं, उनके टीचर कैसे हैं और उन बच्चों के वालिदैन कैसे हैं। इन तमाम चीजों का बच्चे के ऊपर असर होता है। तो पॉइंट वैसे तो बड़ा साफ सुथरा सा और क्लीन सा पॉइंट है, आसान सा, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो समझाएंगे, ये हमारी पूरी आदत लगी हुई है तो हमने तो समझाना है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ट्रेंड चला है और लोग जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात से, ठीक है। सबके अपनी अपनी डिफरेंट रीजंस भी हैं, लेकिन वो ट्रेंड क्या है, होम स्कूल करवाने, ठीक है। यानी बच्चों को जो है ना वो रेगुलर स्कूल से निकाल करके फिर घर के अंदर उनकी तालीम का इंतजाम करना, इसको होम स्कूलिंग का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगरचे कि ये होम स्कूलिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब होम स्कूलिंग का नाम नहीं देना चाहिए इसको, होनी तो ये काम, यानी ये काम करना तो चाहिए, हम खुद भी कर रहे हैं और हम सबको जो है वो प्रमोट भी करते हैं, जो जो कर सकता है उसको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको होम स्कूलिंग का नाम जो है ना ये बेसिकली काफी यानी मिसलीडिंग हो जाता है, यानी थ्रोस पीपल ऑफ काफी ना, वो क्या होता है ये है कि चूंकि स्कूल का लफ्ज जो है ना ये तो आपने फिर भी नहीं छोड़ा है, तो उस वजह से जो है ना वो जो लोग होम स्कूलिंग करते भी है ना तो वो फिर घर के अंदर एक स्कूल बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भाई घर के अंदर स्कूल बनाना जो है ना ये तो मुमकिन नहीं है, अनलेस कि आप पाकिस्तान में रहते हो, वो और बात है। पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप हर जगह स्कूल, आप तो यानी मेरा ख्याल है कोई किचन में भी आप स्कूल बना सकते हैं, ठीक है ना। और आप जो है वो मतलब तो किसी का बस चले तो वो शायद अपने घर के बाथरूम में भी एक स्कूल बनाना शुरू कर दे, ठीक है। यानी स्कूल बनाना पाकिस्तान के अंदर बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई कोई इसकी कंडीशंस वगैरह कुछ होती नहीं है, आप हर जगह स्कूल बना सकते हैं। हमारे एक बचपन में हमारी एक मरहूमा खाला थी, हमें याद है कि उन्होंने अपने घर के अंदर स्कूल बना दिया था। तो बस उसके लिए क्या करना था, और उन्होंने जो है ना कहीं से जब वो टेबलें खरीदनी और चेयर्स खरीदनी लकड़ी की और वो रख करके जाए वो माशाल्लाह घर के यानी पहली मंजिल के ऊपर वो रहती थी, तो अपना स्कूल बनाया बताओ, ठीक है ना। तो इतना आसान होता है, वो बच्चे आने भी शुरू हो जाते हैं, मोहल्ले के अंदर बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि आपके यानी कहीं और नहीं जा सकते तो आपके स्कूल में आना शुरू कर देते हैं। तो स्कूल बनाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कि आप एक स्कूल बन, बल्कि आप अपने जाती बच्चों को ना, जो आपके अपने मतलब हकीकी बच्चे हैं, तो उनकी आपने तालीम का इंतजाम करना है। तो वो तालीम का इंतजाम जो है वो स्कूल बना करके करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप जो है वो प्योर सिंपल तालीम की बात करें ना, स्कूल 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 की बात करते हैं। बहरहाल खैर वो एक अलग डिस्कशन है होम स्कूलिंग के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो हजरत बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर क्यों स्कूल और स्कूल के ग्रेड और स्कूल के अंदर बच्चों यानी वालदैन की पार्टिसिपेशन, भाई ये सिंपली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हजरत की जो ऑडियंस थी ना इन बयानात के अंदर, जो सुनने वाले खवातीन और मर्द थे, तो वो तकरीबन सारे के सारे जो है वो ऐसे ही थे जिनके बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल्स के अंदर जा रहे होते, ठीक है। तो अब उनसे उसी टॉपिक पे बात की जाएगी ना जो कि उनके लिए अप्लीकेबल हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत को पता नहीं है कि आजकल के स्कूलों के अंदर किस किस्म के मसले होते हैं और क्या वहाँ पे खराफात होती हैं और क्या नुकसान होते हैं वगैरह, ये ऐसा नहीं है। तो तो पता है सारी बातें क्योंकि मैं जाती तौर पर जानता हूँ अलहमदुल्ला इस बात। हजरत ने अपने बच्चों को जो है ना वो अपना एक, अल्लाह ताला ने दिया वसाइल दिए, अल्लाह ताला ने जगह भी दे दी, अल्लाह ताला ने जो है वो माल वगैरह भी अलहमदुल्ला अब जो है वो फतुहात का जमाना है तो सब कुछ दिया हुआ है। तो हजरत ने अपना भी एक अलग स्कूल बनाया जिस शहर में रहते हैं ना वहां पे अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चों के बच्चों, ठीक है ना, यानी अपने पोतों पोतियों और नवासे नवासियों, इनके लिए बाकायदा एक अलग प्राइवेट पर्सनल बिल्कुल अपने कंट्रोल में एक स्कूल बनाया, ठीक है। अपने बच्चों को जो है ना वो शहर के अंदर एक से एक जो है वहाँ पे भी मौजूद मौजूद है स्कूल्स, ठीक है ना, अकेडमीज भी मौजूद है और पता नहीं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ठीक है। वहाँ कहीं नहीं भेजा अपने अपने पोते पोते, लेकिन जब अपने बेटे बेटियाँ थे तो बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटली ही पढ़ा, ठीक है, लेकिन बेटों को जो है ना वो वहाँ पे उसको कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था तो फिर उन्होंने भेज दिया स्कूल, ठीक है, क्योंकि इंतजाम नहीं हो सकता था, वसाइल नहीं थे उस जमाने में। तो अपने बेटों को जो है वो रेगुलर स्कूल के अंदर भेजा, हिफ्स भी करवाया और दीनी माहौल भी रखा, लेकिन स्कूलों के अंदर भेजा क्योंकि वसाइल थे ही नहीं ना उस वक्त, ठीक है। अब वसाइल हैं तो अब नहीं किया ऐसा था, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो अपने बच्चों को घर में तालीम तरबियत का इंतजाम कर रहे हैं, तो उनका फिर उनको क्या करना चाहिए, उनको इसमें से जो है ना वो उसूल लेने चाहिए, उसूल, ठीक है। उसूल क्या है इस वाले पॉइंट के अंदर कि पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है ना, माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में खुद शामिल रहे, ठीक है। जब छोटे बच्चे हैं तो सबसे बेहतरीन ये है कि वो खुद उनकी तालीम का इंतजाम करें, बजाते खुद खुद पढ़ाएं, ठीक है। और अगर किसी टीचर को ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं कि वो अपने आपके बच्चों को जो है वो प्राइवेट ट्यूशनिंग दें, तो उसमें भी जो है ना वो खुद इन्वॉल्व इस तरह से रहें कि भाई देखते रहें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेक्चर के अंदर जो है वो क्या चीज़ें आपके बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व रहें और बच्चों के फिर ना सिर्फ ये कि एकेडेमिक प्रोग्रेस के अंदर इन्वॉल्व रहे, बल्कि उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी खुद इन्वॉल्व रहे, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप कंप्लीटली आउटसोर्स ना करते हैं, आउटसोर्स करने का मतलब होता है किसी दूसरे के हवाले कर दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, ठीक है ना। मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, या तो मुझे तो आता ही नहीं है ये वाला काम, तो इस वजह से मैं कैसे काम कर सकती हूँ। अब जो है ना बस कोई और करे मेरे बच्चों की तालीम तरबियत का इंतजाम, इसको कहते हैं आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स नहीं, ये ना करें अपने बच्चों की तालीम के साथ, बल्कि खुद इन्वॉल्व रहें उसके अंदर, ठीक है। बच्चों की जिंदगी में जो 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 भी लोग हैं तो उनका माँ बाप को पता होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स की भी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे टीचर्स रखना जो है ना ये सबसे अहम चीज, टीचर का अच्छा होना, ठीक है। यानी अच्छा होना का मतलब क्या, अभी भी तो सवाल आता है ना कि टीचर अच्छा होना सबसे सबसे जरूरी चीज होती है। तो भाई अच्छे से मतलब क्या क्या मतलब है अच्छा होना? अच्छे होने का मतलब यह है कि सबसे अहम चीज के उसके अकायद सही, ठीक है? ऐसा ना हो कि कोई टीचर आपने अपने बच्चों के लिए रख लिया कि जो कि यानी मुसलमान ही ना हो, ठीक है? इस्लाम देख करके टीचर रखे, मुसलमान टीचर रखे, छोटे बच्चों के लिए कम से कम मुसलमान टीचर रखे, गैर मुस्लिम उस्तादों के हवाले ना करें अपने छोटे बच्चों, ठीक है? गैर मुस्लिम टीचर्स के हवाले ना। और अगर मुसलमान नाम के हैं, मुसलमान भी है ना, तो भी ये भी देख लें कि उनके अकायद भी कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो बज़ाहिर जो है वो अपने आप मुसलमान समझ रहे हैं उनको, लेकिन सहाबा के दुश्मन या खत्म नबूवत का इनकार करने वाले, ठीक है ना, कादियानी है या कादियानी टाइप के कोई और कैटेगरी का ऐसा है, मेहदवी, ये भी एक बिल्कुल कादियानी जैसी एक एक है, ठीक है ना, जो कि कादियानी जैसी उनके अकायदे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं कि ये कौन लोग। अभी वो खत्म नबूवत के हमारे जो एक दोस्त होते हैं वहाँ के अमीर, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि भाई ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये भी खत्म नबूवत का इनकार करें, ठीक है? तो अकायद सही होने चाहिए टीचर, ठीक है? फिर उसके बाद सबसे अच्छा तो ये है कि टीचर के अफकार भी ठीक होने चाहिए, टीचर के सोच के जाविये भी ठीक होने चाहिए, ये भी बहुत है। यानी अगर आप कर सकते हैं इसका भी अहतमाम तो जरूर से करें कि वो लोग आपके बच्चों को पढ़ाएं कि जिनकी सोच ठीक हो, यानी वो कम से कम सोच के लिहाज से जो है ना वो दुनिया को दीन पर तरजीह ना देते हो, दुनिया की कामयाबी ही को जो है ना वो कामयाबी ना समझते हो बल्कि दीन की कामयाबी को कामयाबी समझते हो, तो इसको कहते हैं सोच का ठीक होना, ठीक है? किसी ने यहाँ पे सवाल लिखा है कि बहुत सी बच्ची मैंने देखी है जो अपने घर के लोगों से नहीं पढ़ते। अच्छा, बहुत से बच्चे आपने देखे हैं जो अपने घर के लोगों से नहीं पढ़ते मगर दूसरों से पढ़ लेते हैं, अब क्या करें? तो देखें सब जो असल करने का काम तो ये है ना कि पेरेंट्स जो है ना वो देखें कि भाई वो आपसे क्यों नहीं पढ़, दूसरों से क्यों पढ़, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वो आपसे नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है? उस गलती का कुछ नहीं, उसको ठीक करें, उस गलती को दूर करें, ठीक है? बच्चे आपसे क्यों नहीं पढ़ रहे, तो कोई वजह है ना कि बच्चे आपसे नहीं पढ़ रहे, तो उस वजह को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? आप हो सकता है कि झिल्ला करके उनको डांट देती होंगी, ठीक है? यानी आपसे मुरादी के जिन लोगों को आपने देखा है कि जिनके उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ना चाहते, या तो वो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, डांट देते हैं बच्चों को, जो है वो डिस्करेज कर देते हैं, या इस किस्म का कोई और मसला होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है? या आपने अपना ऐसा मामला किया हुआ है कि बच्चे जो है ना दे हैव स्टार्टेड टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ये दूसरी एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम ये है कि गुस्से की वजह से ना बच्चे को आप बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इस वजह से बच्चा आपसे आपके आपके साथ ही पढ़ना चाहता है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप इतने नरम हैं और आप इतने जो है ना वो नहीं, कोई आपके उसूल ही कोई नहीं है, कोई जो है ना वो आपकी इज्जत ही नहीं है, तो इस वजह से बच्चे जो है वो आपके साथ टिकते ही नहीं। तो भाई या तो अनफॉर्चुनेटली आपके घर के अंदर अगर ऐसा मामला है कि जो घर के दूसरे अफराद हैं वो आपको जलील करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो बहुत सारे घर हैं ना कि शोहर जो है वो बच्चों के सामने बीवी को जलील करते रहते हैं, या सास ससुर जो है वो बच्चों के सामने अपनी बहू को जलील करते रहते हैं, तो बहू की जो है वो इज्जत ही जो है वो इस वजह से जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? तो ये तो आपके हाथ में, ज्यादातर ये नहीं है आपके हाथ, ठीक है? तो फिर तो चले सही है, आपकी एक मजबूरी है, आपने जो है वो फिर कोई और पढ़ाने वाले का इंतजाम करना। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है बल्कि आप जो है वो माशाल्लाह अपने घर के अंदर रहती हैं, और ना शौहर आपको जलील करवा रहा होता है बच्चों के सामने, ना कोई और जलील करने के लिए है, तो फिर आपने खुद ही अपने आप को जलील करके रखा हुआ है बच्चों के सामने, खुद ही आपकी इज्जत जो है ना वो खाक में मिली हुई है। कोई तो भाई उसको सीखे ना जीने, ठीक है, बच्चों को हैंडल करना जो है ये, तो यही तो मिसाली माँ के जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, ये कुछ क्या क्या मकसद क्या है इसका, ये इल्म हासिल करना और फिर इस इल्म के ऊपर अमल करने की कोशिश करना। तो ये तो बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह के हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, कि बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, बच्चों के उसूल बनाने चाहिए और माहौल बनाना चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, और गैजेट्स जो है वो घर के अंदर नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें तो है ना। अब उनको जो है वो अगर हम वाकई समझ करके उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो फिर छोटे बच्चे जो है ना वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, पहली बात। ये पहली बात थी खाली, इतनी तफसील के साथ जो इस आजिज ने करी है ये सिर्फ पहली बात थी, ठीक है। तो अब दूसरी बात पे जाने से पहले आपसे हम अगर पूछें कि हमने पहली बात क्या करी, तो वो कोई बता सकता है कि हमने जो पहली बात बताई है वो क्या है, एक एक जुमले के अंदर अगर कोई बता सके। कि बच्चे दूसरों से पढ़ लेते हैं लेकिन अपने घर वालों से नहीं पढ़ते, तो उसमें पहली बात क्या बताइए, समराइज अगर करें आप सिर्फ एक जुमले के अंदर, तो क्या थी? अपनी इसलाह कर, ठीक है, यानी अपनी इसलाह करें, तो ये तो फिर आपने पूरा तसव्वुफ का निचोड़ भी बना दिया ना। फैमिली बॉन्डिंग, आइडेंटिफाई वाई एंड फिक्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये एक समरी हो गई, ये एक कंप्लीट समरी हो गई। आइडेंटिफाई वाई, क्यों नहीं पढ़ रहे वो आपसे और दूसरों से पढ़ रहे हैं, क्यों आपसे नहीं पढ़ रहे भाई, आइडेंटिफाई उसका, उसको डायग्नोज करें इस प्रॉब्लम को ना, एंड देन फिक्स दैट प्रॉब्लम, फिर इसलाह करें, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात हो गई जदा को। अच्छा, दूसरी बात जो है ना वो करने से पहले हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, हमारे साहब जो है वो दे रहे, ठीक है, तो ब्रेक लेनी है एक्चुअली, अभी ऐसा बस 5 मिनट ही रह गए। तो जी, ये पहली बात हो गई कि अपनी वजह तलाश करनी है कि वो क्यों नहीं आपसे पढ़ रहे हैं, और फिर उसको फिक्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर है आपको इल्म हासिल करना होगा कि भाई सही तरीका क्या था और आपकी क्या गलतियां हैं, ये इल्म हासिल के बगैर नहीं हो सकता, यानी आलिमा बन जाए उसके बाद, नहीं भाई, नहीं आलिमा नहीं बनना होता इन सब कामों के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस का इल्म हासिल करना होता है, लोगों से सीखना होता है, लोगों के तजुर्बों से फायदा उठाना होता है, ठीक है। जो और लोग हैं जो अपने बच्चों को सक्सेसफुली कामयाबी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो उनसे बात करें, उनसे आइडियाज शेयर करें, उनसे पूछें कि आप कैसे करते हैं, कौन से आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे जो है ना वो आप यानी बुक्स इस्तेमाल करते हैं, या कौन सी जो है वो बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि जो लोग जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो लोगों से बात करेंगी तो फिर आपको पता चलेगा ना, इसी को हम इल्म हासिल करना कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो जो बात करनी थी वो ये थी कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप कहीं बच्चों को जो जो कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो कि वो पढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वे ये भी देखें कि क्या वो कंटेंट जो कि आप उनको इस उम्र के अंदर पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या वो जरूरी भी है, क्या वो जरूरी भी है उनको पढ़ाना, क्या उनको इससे फायदा वाकई हो रहा होगा जो कि आप उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, या कि नहीं अभी उनकी उम्र नहीं है ये चीज पढ़ाने की, उनको पढ़ाने की ये उम्र नहीं है, अभी उनकी जरूरत नहीं है, अभी उनको कोई ऐसी यानी कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर आप वो बात वो चीजें उनको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से खाली चीजों बच्चों को वो चीजें पढ़ाने की कोशिश ना करें बिकॉज स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते, क्या वजह है आपकी कि भाई मेरे बच्चों को भी ये चीजें आ जाएं, क्यों, इसलिए कि स्कूल में ये पढ़ाई जाती हैं, और मेरे बच्चों के जो कजन जाते हैं स्कूल में जो है ना, तो वो कजन जो है वो ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे भी पढ़ानी जरूरी है, ये कौन सा क्राइटेरिया है, कि चूंकि दूसरे बच्चे ये चीज पढ़ रहे हैं इस वजह से आपको ये चीज पढ़ानी जरूरी है। भाई ये बात हम बहुत दफा समझा चुके हैं और इसको अगर आप समझना चाहें तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। वो ये है कि ये जो स्कूल सिस्टम्स होते हैं ना, ये एक कमर्शियल सेटअप होता है, ये कमर्शियल सेटअप होता है, और यानी ये कमर्शियल सेटअप का मतलब ये है कि ये पैसा चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है ना, ये फ्री में तो नहीं आपके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना, ये तो इनका बिजनेस होता है, और इनका बिजनेस जो है वो मतलब होना कोई नाजायज चीज नहीं है भाई। उनको भी अपना पेट पालना है कि नहीं पालना, ये सिर्फ आपके आपको पेट पालना होता है, जो स्कूल बिजनेस चला रहे होते हैं उनको पेट नहीं पालना होता अपना, वो क्या खाएंगे, वो हवा खाएंगे हैं, वो जो है वो चश्मे का पानी पियेंगे, क्योंकि आजकल तो पानी भी फ्री नहीं आता, पानी के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, खाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, घर के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, किराए के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जी स्कूल वाले जो है ना वो पैसे ना कमाएं, वो फ्री में हमारे बच्चों को पढ़ाएं। क्यों भाई, क्यों पढ़ाएं वो आपके बच्चों को फ्री में, वो उनके बच्चे कहाँ पे भूखे भूखे सोएंगे फिर रात को। तो वो तो कमर्शियल सेटअप है ना। अब कमर्शियल सेटअप में जो बुराइयां आ जाती हैं वो इस वजह से आ जाती हैं कि वो ज्यादा पैसे की हवस, यानी जितना आपको जायज मिल रहा होता है कि भाई आपने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से जो है ना वो नॉर्मल आप उनसे चार लोगों से चार्ज कर ले, नहीं बल्कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, इसको हवस कहते हैं, ठीक है ना। अब हवस जब किसी इंसान को लग जाती है ना, ठीक है ना, लालच और हवस जब लग जाती है तो फिर वो नाजायज तरीकों से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अब जो ये स्कूल सिस्टम वाले हैं तो इनमें अक्सरियत कैसे लोगों की है जो आखिरत का खौफ, अल्लाह का खौफ ना रखने वाले लोगों, ठीक है। तो अब इनके लिए तो कोई मजबूरी नहीं है ना कि ये नाजायज तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश ना करें, भाई वो तो करेंगे, नाजायज तरीके से आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब स्कूल वाले आमदनी को कैसे बढ़ाएं ये आप बता दें, ताकि आपको जरा समझ में भी आ जाए बात। खुद बताएं कि जो स्कूल बिजनेस में, ठीक है ना, यानी उसकी रोटी पानी जो है वो स्कूल चलाने के साथ बंधा हुआ है, अब वो अपनी आमदनी बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए ये बताएं आप। आमदनी हराम नहीं है, ठीक है, आमदनी जायज है भाई, वो काम कर रहे हैं, आपको एक सर्विस दे रहे हैं, उसके सर्विस के बदले में वो आपसे फीस ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उनको हवस लग जाएगी, लालच लग जाएगी, तो वो स्कूल चलाते हुए अपनी हवस को कैसे पूरी करेंगे, ट्यूशन के, इन्होंने लिखा ट्यूशन के जरिए से, नहीं भाई स्कूल वाले को थोड़ी ट्यूशन देते हैं, ट्यूशन तो टीचर्स देते हैं ना अपनी जाती टाइम के अंदर जाकर के, फिर वो ट्यूशन देते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं ट्यूशन से, क्या मतलब ट्यूशन से, मिसाल के तौर पर बात समझने के लिए, सवाल समझने के लिए, कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो है ना वो मरीज को ट्रीट करता है और उसके बदले में अब यानी फीस चार्ज करता है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब जो है वो अगर चाहें कि मैं बहुत अपनी आमदनी बढ़ा लूं, तो डॉक्टर साहब आमदनी अपनी कैसी बढ़ाएंगे कि वो मरीज से ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। अब मरीज जो है ना वो कहे कि भाई मैं क्यों आपको ज्यादा फीस दूं, मैं किसी और डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, ठीक है, तो वो ज्यादा फीस देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब क्या करें कि लोग ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हो जाएं, डॉक्टर साहब फिर उसके लिए नाजायज तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी दूसरा नाजायज तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे फीस बढ़ाने के बाद, वो ये करेंगे कि मरीज के अंदर जो बीमारी नहीं है ना उसको भी बताना शुरू कर देंगे कि भाई तुम्हारे अंदर ये बीमारी भी है, मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो अगर तुमने भारी फीस दे करके मेरा इलाज ना करवाया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसे जो है वो डॉक्टर की आमदनी बढ़ जाएगी, नाजायज आमदनी बढ़ जाएगी उसकी। अब सवाल ये है कि स्कूल वाले अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए, एक तो है ना भाई वो नॉर्मल चार्ज कर रहे हैं, जैसे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो उनको पढ़ा रहे हैं, जिस चीज जरूरत है वो पढ़ा रहे हैं, मजीद चाहिए और चाहिए, हवस लग गई है मुंह, तो स्कूल वाले कैसे बढ़ाएं, टू एड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दैट आर नॉट नीडेड, लाइक इन पाकिस्तान पेरेंट्स हैव टू बाय एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम स्कूल, राइट। यूनिफॉर्म भी आपने हमसे ही खरीदना है, आपने जो है वो पेपर पेपर, पेंसिल, कॉपी, जो स्टेशनरी, ये सारी की सारी आपने स्कूल से ही खरीदनी है। अब स्कूल वाले जो है ना, वो सस्ते दामों के ऊपर थोक के माल के, थोक के मार्केट से जाके ये सारी चीजें खरीद लेंगे, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ जो है वो पेरेंट्स को बेचेंगे। इस तरह उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये एक तरीका आपने बड़ा जबरदस्त बताया, ये होता है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा। और एडमिशन ओपन करेंगे, फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, ठीक है ना, यानी मजीद बच्चों को लेकर के आएंगे। अब एक एक टीचर जो है वो अच्छे से 10-15 बच्चों को पढ़ा सकता है, मैक्सिमम 20 बच्चों की क्लास को एक टीचर मैनेज कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब उनको ज्यादा हवस लग जाएगी तो वो कहेंगे कि नहीं, एक एक क्लास के अंदर 40 बच्चे भी हो सकते हैं, 50 बच्चे भी हो सकते हैं, ताकि ज्यादा ट्यूशन फीस आए, है ना। ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा फीस आएगी। अब ये नाजायज आमदनी हो गई, क्योंकि अब उन बच्चों को जो है वो टीचर हैंडल ही नहीं कर पाती, ठीक है ना। और बताएं, ओवरलोड कर देते हैं इररेलेवेंट बर्डन डाल करके, ठीक है ना। जिस तरह से एक डॉक्टर जो होता है ना, वो मरीज को ऐसी दवाएं देता है जिसकी उसको जरूरत नहीं थी। अब हम आ रहे हैं अपने असल मकसद के ऊपर। डॉक्टर अपनी आमदनी कैसे बढ़ाते हैं कि वो मरीज को वो दवाएं देते हैं जिसकी मरीज को जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और वो कैसे देते हैं, मरीज को बावर कराते हैं, मरीज को यकीन दिलाते हैं कि देखो, इन दवाओं के बगैर तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब बातें करते हैं, तब वो मरीज जो है वो उन दवाओं को लेने के लिए तैयार होता है ना। उसी तरह से स्कूल वाले भी, कि तुमने अगर अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया और ये भी नहीं पढ़ाया और इतना नहीं पढ़ाया और इतना नहीं किया, तो तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, वो दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं होंगे, और वो सबसे पीछे रह जाएंगे, और वो फेल हो जाएंगे, और वो फेलियर्स बन जाएंगे। इस तरह की बात है, ठीक है ना। तो ये तो भाई कमर्शियल सेटअप में जब लालच और हवस दाखिल हो जाए तो यही होता है, ठीक है ना। अब आप जो है ना, वो इन चीजों को समझती हैं कि नहीं, जो स्कूल वाले कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारे बच्चों के खैर ख्वाह हैं। नहीं, वो आपके बच्चों के खैर ख्वाह नहीं है, वो अपने आपके बच्चों के खैर ख्वाह नहीं है, वो कोई खुदा का खौफ रखने वाले नेक परहेजगार अल्लाह के वली लोग नहीं है जो कि स्कूल सिस्टम चला रहे, ठीक है। तो अब वहां से जो कुछ आपने देखा कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, अब आपने जो है ना, वो घर के अंदर भी वही पढ़ाना शुरू कर दिया, वही सारा का सारा पढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो भाई वो तो आप नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों। अब अगर आपका बच्चा आपके साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपसे जो है वो नहीं पढ़ रहा, तो उसमें दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट ही शुड बी टॉट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, जरा सी अपने इस इन चीजों के ऊपर भी जरा जगाएं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, और देखें कि आप यानी लकीर को फकीर बन करके गलत काम तो नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो अगर ऐसा है तो उसको खत्म करें, कर्ब कर्ब करें उसको, कम करें उसको, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, फिर आपका बच्चा आपसे ही पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से ले ली ली हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए पैसे चार्ज करते हैं थ्रू अननेसेसरी स्टॉप अट्रैक्टिव करिकुलम, जो एक्टिविटीज हमारे वक्त फ्री थी उनका चार्ज होता है, कम प्रोफेशनल टीचर्स कम तनख्वाह पे रखेंगे जबकि फीस ज्यादा लेंगे। हाँ, ये भी तरीके हैं, लेकिन हमारे मौजू से मुतल जो तरीका था कि ऐसी चीजों को वाजिब करार दे दें और आपके जहन में ऐसी चीजों को इंतहाई अहम बना दें कि जो कि आपके बच्चों के लिए जरूरी भी नहीं थी, बल्कि वो आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह भी थी, ऐसी भी चीजों को वो वाजिब बना देते हैं ना। हम तो जाहिर है ना बिल्कुल, तो हम ऐसी चीजों को अपने लिए फायदेमंद समझना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे लिए एक्चुअली नुकसानदेह थी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डॉक्टर लोग ये वाली हरकत नहीं करते, ये तालीमी निजाम वाले लोग भी यही वाली हरकत करते हैं, ठीक है। तो अब घर के अंदर जो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर इन चीजों का ख्याल रखेंगे, तो फिर उनके लिए जो है ना, ये डोमेस्टिक एजुकेशन का सिस्टम जो है वो चल सकेगा। और अगर वो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि लकीर का फकीर और अंधी तकलीद स्कूल सिस्टम की और पेयर प्रेशर और खानदान वालों का प्रेशर, इसी में अगर रहेंगे ना, फिर वो नहीं कर सकते ये काम, फिर वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उनको बेहतर ये है कि आउटसोर्स ही करो अपने बच्चों को, जहन्नुम में डालो अपने बच्चों को, स्कूल सिस्टम के हवाले को। आप नहीं कर सकती ये वाला काम, अपने आप को मजबूत करना ये प्री रिक्वेस्ट है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक लंबा सा एक मैसेज लिख दिया, मुझे क्लास खत्म भी करनी है, लेकिन खैर पढ़ लेते हैं जल्दी से, कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखकर कोर्स खुद डिजाइन करें। सुन लीजिए इन बातों को, माशाल्लाह उन्होंने काफी रिसर्च करी हुई वैसे होम स्कूलिंग वगैरह के टॉपिक के ऊपर, तो सुन लें इसको। तो उन्होंने बोल के मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, मुझे अंदाजा है कि आपने अच्छी खासी रिसर्च करी हुई। तो ये आपके साथ ही मिलके पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा है कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखकर कोर्स खुद डिजाइन करें, बुक्स के टॉपिक्स और बुक्स खुद सेलेक्ट करें, देन जस्ट सी द डिफरेंस। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, होम स्कूलिंग की काफी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉर न्यू मॉमीज, ठीक है, नई मदर्स के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं। वंस यू गेट अटैच्ड विद दिस इट सीम्स रिलैक्स फॉर यू एंड फॉर योर किड्स एज वेल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका बच्चा घर में होगा, मेंटल स्टेट नॉर्मल रहेगी उसकी, ठीक है। मेंटल स्टेट और मौलवी साहब के साथ जब बात करते हैं तो फिर स्पिरिचुअल स्टेट जो होती है ना, वो मेंटल स्टेट ज्यादा अहम होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, वो इसके बेनिफिट है, उसका स्पिरिचुअल स्टेट का सही रहना, उसकी मेंटल स्टेट का सही रहना। और इसके लिए जो है ना, वो सही तरीका यही है कि आप खुद से रिसर्च करें, लोगों से बात करें, पढ़ें थोड़ा सा, फिर जो है वो सोचें चीजों के ऊपर, और अपनी दुनिया आप पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदगी में, ठीक है। यानी नेकों की इत्तबा करने का तो हुक्म है ना, लेकिन दुनियादारों की और फासिकों और फाजिरों की इत्तबा क्यों कर रही है भाई, ठीक है। उनसे हट करके जो है ना फिर अपना काम करें, तब ये फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है। बहरहाल यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाह खुदा वाना, अलहमदुल्ला, रब्बुल आलमीन, सलाम।